اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 24 یعنی اعمال کے ریکارڈ کے، ہم اس سے لیکچر کے پیج نمبر ہیں 213 پہ۔ اس میں 211 پہ ایک چارٹ گزرا ہے جس میں تصویر بنی ہوئی ہے تالاب کی، اور اس کی ہیڈنگ ہے نور کا تالاب، اور اس کے بعد 214 نمبر پیج پہ بھی ایک چارٹ دیا گیا ہے۔ تو یہ بیچ میں تھوڑی سی ریڈنگ رہتی تھی، میرا خیال ہے کہ ہم پہلے سے پورا کر لیتے ہیں پھر ان دو چارٹس پہ آ جائیں گے۔ تو یہ پہلا جو پیج ہے 213 پیج پہ، یہ ہم نے کل پڑھا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت ودیت کر دی ہے کہ انسان بیک وقت 6 شعوروں سے کام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ دن اور رات حواس کی دو قسمیں ہیں، یہ دن اور رات اصل میں حواس کی دو طرح کی رفتاریں ہیں۔ دن رات اور دن کے حواس یکساں طور پر کام کرتے ہیں، یعنی دونوں جگہ حواس ایک ہی ہیں، حواس وہی ہیں۔ دیکھنا، خواب میں بھی دیکھتے ہیں، بیداری میں بھی دیکھتے ہیں۔ خواب میں بھی آپ کو احساس ہوتا ہے میں نے کسی چیز کو سونگا ہے، خواب میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو سنا ہے، خواب میں بھی محسوس ہوتا ہے میں نے چھوا ہے یا کسی چیز کو پکڑا ہے۔ تو حواس تو دونوں جگہ یکساں کام کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ دن میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور رات میں حواس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے۔ حواس کی کم رفتاری سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی شعوری طور پر کم سفر کرتا ہے، یعنی اگر حواس کی رفتار کم ہوگی تو آپ ظاہر ہے کہ بیل گاڑی پہ بیٹھے ہوں گے تو بیل گاڑی کی کیا رفتار ہے، اور اگر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوں گے یا کار میں بیٹھے ہوں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ رفتار بیل گاڑی کی رفتار سے زیادہ ہے، تو آپ زیادہ سفر طے کریں گے۔ اور تیز رفتار حواس سے سفر میں تیزی آ جاتی ہے، یعنی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو دن کے حواس میں چونکہ رفتار کم ہوتی ہے اس لیے سپیس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ سپیس کا غلبہ توڑنے کے لیے آپ کو حواس کی رفتار بڑھانی ہے، یہ اس میں فارمولا ہے۔ رات کے حواس میں دن کے حواس کے مقابلے میں رفتار بڑھ جاتی ہے، اس لیے سپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن سپیس سے آزاد ہونے کے باوجود فرد سپیس میں ہی موجود رہتا ہے۔ اور یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے کہ سپیس میں تغیر واقع ہو جاتا ہے، آدمی بیداری میں زمین پر چل رہا ہے، وہی آدمی خواب کی حالت میں سپیس سے آزاد ہو کر کسی دوسرے سیارے میں چل پھر رہا ہے۔ اب چلنا پھرنا اس بات کی علامت ہے کہ زمین کی سپیس ہر سیارے میں موجود ہے، سپیس ایک ہے لیکن ٹائم بے شمار ہیں، یعنی ہر سپیس کا ایک اپنا علیحدہ یونٹ ہے ٹائم کا، وہ رفتاروں کے ساتھ طے ہے، یعنی کہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اب اس فرمان میں بتایا گیا ہے کہ ساری کائنات نقطہ وحدانی ہے، نقطہ وحدانی تالاب میں جو فوارہ ہے، جو جس کے اندر روشنیاں ابلتی ہیں، اچھلتی ہوئی باہر نکلتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں، وہ فوارہ نقطہ وحدانی ہے۔ تو نقطہ وحدانی جس طرح حکم ہوتا ہے کائنات اس کو ماننے پر مجبور ہے، یعنی نقطہ وحدانی آگے جتنا کسی قطرے کو یا کسی پانی کی وہ جو دھار ہے اس کو جتنے زور سے فورس سے आगे को उछालेगा, वो उतनी ताकत से ऊपर जाके तो तालाब में गिरेगा, जिस साइज का वो बनाएगा वैसा ही होगा। तो ये जो बात है, इसको जिस तरह का हुक्म है, यानी हुक्म उसकी डायमेंशंस का तय होना है, तो कायनात उसको मानने पर मजबूर है। अल्लाह खालिक है, खालिक ने अपनी सिफात मखलूक को मुंतकिल कर दी है। अल्लाह बहैसियत खालिक के, बहैसियत खालिक के रब्बुल आलमीन है, और सिफत रब्बानियत से मखलूक जिंदा है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। यानी जब हम खुद अपने इनर सेल्फ को जान लेते हैं तो अल्लाह की सिफत रबूबियत से वाकिफ हो जाते हैं। जब हम नफ्स इंसानी का तज़करा करते हैं, दरअसल उन तमाम सलाहियतों और सिफात का तज़करा करते हैं जिन सलाहियतों और सिफात पर इंसानी जिंदगी बरकरार है। और जब इंसान अल्लाह की तरफ से मुंतकिल शुदा सिफात से वाकिफ हो जाता है तो अल्लाह से वाकिफ हो जाता है, इसलिए कि वो सिफत रब्बानियत से वाकिफ हो गया है। यानी अल्लाह की सिफत रब्बानियत को जानने के बाद आप अल्लाह को जान सकते हैं। सिफत रब्बानियत को जानना क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं हूं तेरा रब, मैं हूं अल्लाह आलमीन का रब। अल्लाह ताला ने इन आयतों में अपनी जात को अल्लाह और सिफात को रब फरमाया है। जब कोई बंदा अपने अंदर मौजूद रबूबियत की सिफात से मुतारिफ हो जाता है तो वो अल्लाह की सिफत रब्बानियत से मुतारिफ हो जाता है, क्योंकि कायनात के तमाम अफराद में अल्लाह की ये सिफत काम कर रही है। इसलिए बंदा सिफत रब्बानियत से मुतारिफ होके मौजूदात से वाकिफ हो जाता है, और इस वाकफियत की बुनियाद पर मौजूदात उससे करीब हो जाती हैं। ये वाकफियत किधर जाती है? कुर्बत की तरफ। वाकफियत के बगैर आप करीब नहीं हो सकते। अब इस लेक्चर का आखिरी पार्ट है तख्लीकी फार्मूला। ये कायनात में जो कुछ है सब रोशनी है, हर रोशनी एक अलग नौ है। हर नौ में रोशनी की मुअय्यन मकदारें काम कर रही हैं। हर नौ में रोशनी की मुअय्यन मकदारें काम करती हैं। अब गौर करें, हर चीज में फर्क इसलिए है क्योंकि उसके अंदर रोशनी की मकदारों का फर्क है। और मकदार किसको कहा गया? मकदार एक रंग है, यानी रंग क्या है? ये लहर की फ्रीक्वेंसियां और उसकी इंटेंसिटी का नाम है रंग। तो ये मकदार एक रंग है। अब रंगों की तरतीब से शक्लें वजूद में आती हैं, और हर शक्ल में तरतीब के साथ यकसानियत है। तरतीब भी है और यकसानियत भी है। मसलन मिसाल देखें कि बकरी की नौ में जितनी भी बकरियां होंगी सबके अंदर एक कदरे मुश्तरक होगी। अब जमीन पर 6 अरब आदमी मौजूद हैं और इंसानी शुमारियात से बहुत ज्यादा आदम दूसरे सियारों पर मौजूद हैं। हमारी जमीन पर बसने वाला आदम हो या कोई दूसरे सियारे में रहने वाला आदम हो, सबकी शक्लों में मुशाबहत पाई जाती है। आपकी साइंस, लेटेस्ट मॉडर्न साइंस, क्या इतने तयक्कन के साथ, इतने यकीन के साथ, इतनी मतलब कि वजाहत के साथ ये बात कह सकती है कि दूसरे सियारों सियारे हैं और उसमें इंसान बसता है? वो अभी तक कह रहे हैं कि हाँ, देर आर एलियन, देर माइट बी एलियन, दे आर नॉट श्योर. ये फर्क है जो कि फिजिकल अलूम, फिर साइकोलॉजी और उसके बाद पैरासाइकोलॉजी के अलूम की वजह से इंसान की फिक्र की रसाई दूसरे सियारों तक विदाउट यूजिंग योर मटीरियल मीन्स, कोई रॉकेट नहीं है, कोई सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं और देखें किस तरह बता रहे हैं. अब इसमें एक और बात देखें, फरमाया के बकरी की नौ में जितनी भी बकरियां होंगी, बकरी की नौ, नौ में आगे किस्में है, नौ बकरी है, बकरी में कितनी किस्म की बकरी है. अब आप गौर करें, कोई पहाड़ी बकरी है तो कोई जी ये देसी बकरी है, बकरियों की किस्में, ये जी अफ्रीकन बकरी है तो ये बकरी की नस्ल, फिर आगे हर किस्म में कितने अफराद हैं. इसी तरह इंसान, इंसान देखें तो रोशनियों से बना है, सिमिलैरिटी है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज के लोग इंसानों में स्या रंग गालिब है, रंग. और उसके बाद देखें कि यूरोपियंस में, कैकेशियंस में वाइट रंग उनकी स्किन में नुमाया है. इसी तरह आप चाइनीज में देखें तो वो येलोइश है. और इसी तरह अगर आप बड़े सगीर पाक को हिंद में देखें, इटली तक देखें, तो यहाँ पे स्किन जो है ये सांवली है, खाकी रंग से करीब है. तो ये इन बनी नौ आदम की आगे ये चार मेन किस्में, आगे फिर इनके कॉम्बिनेशन कई हैं. फिर उसके बाद मजीद देखें तो हर किस्म के इंसानों में आगे अफराद हैं. तो ये सारा रंगों का फर्क है, रंगीनियों का. और यहां पे क्या है कि हर नौ की रोशनी की एक मुअय्यन मकदार है, हर नौ के लिए रोशनी की एक मुअय्यन मकदार है. और ये तख्लीकी फार्मूले के ज़ेल में बताया जा रहा है, रोशनी की मुअय्यन मकदार में रद्दो बदल इसलिए वाक्या नहीं होता कि हर रोशनी की मरकजियत नुक्ता वहदानी है, यानी सोर्स ऑफ इमरजेंस, जहां से वो इमर्ज कर रही है, बाहर आ रही है, वो नुक्ता उसकी मरकजियत है. और हर रोशनी नजूल के बाद नुक्ता वहदानी की तरफ सऊद करती है, यानी उससे निकलती है, अपना इजहार करती है, मजहर बनती है और वापस नुक्ता वहदानी की तरफ पलट जाती है. ये आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की पूरी तशरीह, ये उसका पूरा साइंस और मैकेनिज्म बताया जा रहा है. अब आ जाएं जरा पेज नंबर 211 पे. पेज नंबर 211 पे है नूर का एक तालाब. अब इसका पहला कदम कायनात की शक्ल है, यानी पहले कदम पे कायनात एक शक्ल बनती है. दूसरा कदम नौ का हेउल है. पहले कदम पे कायनात, कायनात के फिर आगे अज्जा अनवा नौ, फिर नौ के बाद है फर्द की रूनमाई. ये लफ्जों कुर्बान जाऊं, बहुत ही देखें, कायनात पहला कदम, ये नूर का तालाब जो है इसमें पहला कदम है कायनात की, पूरी कायनात, पूरी कायनात, फिर उसमें अनवा, फिर उसके बाद अफराद, तीन दर्जे हो गए. हमें शऊर को इनफरादी सतह से नोई सतह पे ले जाना है, और नोई सतह से फिर कायनाती सतह पे, और इंसान को ये शर्फ हासिल है कि वो कायनाती सतह से भी ऊपर उठ के अल्लाह तबारक व ताला के जहन को समझ सके. अब इसके तस्वीर बनी हुई है, इसके नीचे देखें, तालाब में फव्वारे का पानी गिर रहा है, तो तालाब में दायरे बनते हैं। अब नंबर एक तालाब, यानी वो बिसात जिस पर कायनात का कयाम है, ये चार चीजें हैं, वही चार, ये तालाब, तालाब में हरकत, ये है अम्रे इलाहिया, जिससे हरकत वजूद में आती है, अल्लाह की मशीयत कह लें, उसने काम लेना है, उसने काम करने का आगाज किया, तो अमर, अम्रे इलाहिया, तो हरकत हुई, तो तालाब में हरकत, यानी अल्लाह की सिफात में हरकत। तीसरे दर्जे पे तालाब में दायरे बन रहे हैं। ये कायनात के अंदर नौए और अफराद हैं। चौथा, दायरों का तालाब के अंदर जज्ब होना, यानी अपनी असल की तरफ लौटना है, क्योंकि लहर बनी और वो वापस पानी में बैठ गई, खत्म हो गई, तो ये उसने अपना डिस्प्ले किया, रिकॉर्ड बना। अब उसको नीचे देखें, ये दो एरो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये वो लहरों को, इसकी फिर नीचे की तरफ तशरीह की है। नंबर एक तालाब है, नंबर दो बिसात है, नंबर तीन कायनात का कयाम है, नंबर चार अमरे इलाहिया है, नंबर पांच हरकत है, नंबर छह तालाब में दायरे हैं। फिर ये छह चीजें हो गई। अब ये चार से छह हो गई, अब इनको दोबारा देखें, इधर स्टडी करें कि तालाब में हरकत, यानी एक पहले नंबर पे है हरकत, दूसरे नंबर पे हरकत के नतीजे में नौए वजूद में आ गई, उसके बाद अफराद तीसरे दर्जे पे, हरकत ये पूरी कायनाती हरकत, फिर दूसरे नंबर पे नौए, तीसरे नंबर पे अफराद, अब चौथे नंबर पे रिकॉर्ड बन गया। अफराद ने जो अमालो अशगाल किए उनका एक रिकॉर्ड मुरतब हो गया। पांचवा क्या, अब असल की तरफ वापसी का सफर शुरू हुआ। और फिर छठा दर्जा क्या, बिसात में जज्ब हो जाना, वापस बिसात में जज्ब हो जाना। ये छह दर्जे, अब सित्ताते अय्याम, ये हैं वो छह दर्जे शऊर के, सित्ताते अय्याम। उधर इसी बात को यूं बयान किया गया था कि जी छह सात शऊर हैं, शऊर के सात दर्जे हैं, क्या के आप जमादात से वाकिफ होते हैं, नबातात से वाकिफ होते हैं, फिर हैवानात से वाकिफ होते हैं। अब इंसान मादी तौर पे हैवानी सतह पे, फिर ये जब इन तीन दर्जों से पूरी तरह आगाह होता है, तब वो आलम खफीफ यानी जिन्नात से वाकिफ होता है, फरिश्तों से वाकिफ होता है, फिर उससे ऊपर उठकर मलाए आला से वाकिफ होता है, फिर यहां के बाद मलाए आला से भी अगला दर्जा जो है वो है शख्स असगर का, यानी कंट्रोल रूम यानी अर्श का। ये हैं सात दर्जे, सबे समावात इसको कहा गया। अब आ जाएं जरा 214 नंबर पेज पे, ये मुय्यन मकदारों की बात, ये तालाब वाली बात समझ आ गई, मिसाल देखा, इसकी वजाहत देखी आपने पहले अल्फाज में, फिर ये डायग्राम बना के। मुर्शिद करीम ने कोई कसर छोड़ी है हमें बात ना समझाने की, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमने भी अहद किया हुआ है कि नहीं समझना। आप इस अहद को छोड़ दें और कोशिश करें कि ये जहन नशीन हो जाए, ये मिसाल पे बहुत गौर करें, आपको जिंदगी में हर तरफ ये मिसाल नजर आएगी, बशर्ते कि आप देखना चाहें। अब आ जाती है बात जी मुय्यन मकदारें क्या चीज है। मुय्यन मकदारों के भी आगे दो हिस्से हो गए, एक है आलम नूर में और एक है आलम अमर में। जब ये मकदारें आलम नूर में हैं तो इन्हीं को असले जमान कहा है। असले जमान से क्या मुराद है कि जमान गालिब है और मकान मगलूब है, लेकिन आलम अमर में ये मिकदारें असले मकान हैं, मकानियत की असल हैं। अब यहाँ पे क्या असले मकान में कि इसमें मकानियत गालिब है लेकिन जमानियत मगलूब है, यानी हमारी इस मादी जिंदगी में टाइम मगलूब है, नजर नहीं आ रहा। जिस चीज को आप और मैं अपनी सहम में वक्त मानते हैं वो तो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ये घड़ी का चलना जो है ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेशन क्या है कि जी जमीन के अपने महवर के गिर्द एक चक्कर लगाने को आपने 24 घंटे मान लिया और उस 24 घंटे को घड़ी की सूरत में इजहार किया। घड़ी की सूरत में इन 24 घंटों को इजहार करना हमने इसको वक्त माना हुआ है। लेकिन अगर आप अपने जहन में ऐसे बैठे बैठे तसव्वुर करें कि मैं जमीन से ऊपर उठ गया, वो ऊपर से कोई 100 200 400 मील ऊपर चला गया, बताइए वहां तो जमीन आपको ऐसे दिखेगी जैसे कोई दूर गेंद घूम रहा है। अब बताइए आप टाइम कौन से टाइम जोन में, तो स्पेस एक ही है, स्पेस आपकी हमारी स्पेस वहां पे भी वही है, लेकिन वहां पे टाइम का ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा क्योंकि ये मादी तर्जों का है। असल टाइम किसे कहते हैं, मकानियत क्या है, जमानियत क्या है, वो बता दिया कि बिसात जमानियत है और जमानियत का डिस्प्ले ये मकानियत है। अब देखें मजीद नीचे देखें कि मिकदारों को दो तरह से है, मिकदारों को एक तरह से तो इस तरह दिखा दिया कि आलम नूर और आलम अमर, आलम नूर में जमानियत गालिब है मकानियत मखलूब है, आलम अमर में मकानियत गालिब है और जमानियत मखलूब है। अब यही मिकदारें एक तरफ रंगीन रोशनी है, ये रंगीन रोशनी जो है ये जिस्म बना रही है और ये तगयर पजीर है, उधर यही मिकदारें बेरंग रोशनी है और यही जिंदगी है और इसी का नाम फितरत है। इसी रंगीन रोशनी का नाम मुसाफिर है, इसी जिस्म का नाम शऊर है और यह तगयर पजीरी जो है ये मकानियत है। और इसके नीचे आप गौर करें लिखा है कि यही एहसास है और यही हरकत का तूल है। वो जो तालाब में के डायग्राम में हरकत, यानी अल्लाह के जहन में जो हरकत पड़ रही पैदा हो रही है, वो हरकत कहाँ तक जाती है, ये उसकी तवालत जो है ये क्या है, ये है मकानियत। ठीक। अब ये जो बेरंग रोशनी है ये है किरदार, ये है हकीकत, इसी का नाम है शऊर, सॉरी लाशऊर। ये जो बेरंग रोशनी है इसकी मिसाल है रास्ते की, उधर रंगीन रोशनी की मिसाल दी मुसाफिर की। ये रास्ता जो है ये ला तगैयर है, देखे ना एक राह चलती है। अब यहां से आप कराची जाते हैं, कराची से सॉरी लाहौर जा रहे हैं, तो कराची से लाहौर का रास्ता जो है सड़क वो तो अपनी जगह पड़ी है, वो तो नहीं चेंज हो रही, लेकिन चलने वाले मुसाफर हर रोज हर लम्हा जो नए लोग आ रहे हैं, फिर हर मुसाफिर हर कदम पे नई सूरत हाल को क्या कहते हैं, हर नई सूरत हाल का सामना कर रहा है। रास्ता ये ला तगैयर है और इसी का नाम, ये जो बेरंग रोशनी है इसी का नाम जमानियत है। और ये असल में क्या है, ये हरकत की रफ्तार है, वो हरकत का तूल है और ये हरकत की रफ्तार है। हरकत का तूल स्पेस जनरेट करता है और हरकत की रफ्तार ये जमानियत है। अब आ जाएं नीचे चार जुमले लिखें, खदो खाल क्या हैं, ये जमानियत के अज्जा हैं। खदो खाल, अब खदो खाल फीचर्स को कहते हैं। देखें बच्चे के फीचर्स, जब वो लड़का हो जाता है तो उसके फीचर्स बदल जाते हैं, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसी बच्चे के फीचर्स कितने चेंज हो जाते हैं वो आपके सामने। तो खदो खाल असल में ये जमानियत के अज्जा है, ये है तर्ज फिक्र रूहानी बंदों की। वो किसी के खदो खाल देखते हैं तो उन्हें पता है कि ये जमाने के अज्जा को देख रहे हैं। अब आलम अमर क्या है, ये इल्मुल कुलियात है। इल्मुल कुलियात का मतलब है कि इक्वेशंस हैं जहां पे रोशनियों की कितनी मकदारों को आपस में मिलाना है, कि उसके वो फार्मूले जो हैं। अब खदो खाल का ताल्लुक जो है ये आलम अमर से है, और रूह जो है ये नफ्से वाहिदा है, और रंगों का निजाम आलम खल्क को कंट्रोल करती है। रूह नफ्से वाहिदा है और रंगों के निजाम, रंगों का सारा निजाम आलम तखलीक आलम खल्क है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने हमने खल्क किया और अमर किया, यानी तखलीक में क्या है जर्रा, जर्रा क्या है फर्द, फर्द असल में क्या है हरकत, यानी अल्लाह का तखलीक करना और उसको अमर करना यानी के उससे कोई काम लेना या उसको हुक्म करना। हमारे यहाँ ये लफ्ज अमर का तर्जमा हुक्म किया जाता है आम तराजम में, लेकिन इसका असल मफहूम बनता है काम, और इसकी जमा बनती है अमूर। तो आप कहते हैं ना अमर की जमा अमूर की जाती है। अब कुरान हकीम में अवामिर का लफ्ज आता है, अवामिर और नहीं, यानी कुरान के डूज एंड डोंट्स, जिस चीज को करने का कहा जाए वो अमर हुआ। तो अब आप उसे हुक्म माने या करने का काम कहें, तो मैं कहता हूं कि सिर्फ हुक्म मान के तो हम नाफरमानी के मुर्तकिब होते ही रहते हैं, बेहतर है कि आप उसे करने का काम समझ के तो काम करें। तो ये वो सारा निजाम है कि रंगीन रोशनी, इसमें मैं ये आलम नूर के नीचे ये जो है ना बेरंग रोशनी, ये जिंदगी है, ये फितरत है, यही किरदार है, यही हकीकत है, यही लाशऊर है, ये आलम नूर। और ये जो आलम अमर है ये रंगीन रोशनी है, ये जिस्म है, ये तगैयर पजीर है, इसी का नाम मुसाफिर है, और यही शऊर है, यही स्पेस है, इसी शऊर की वजह से हम एहसास से आशना है, और ये असल में हरकत है तूल का, या हरकत का तूल, इसी को मकानियत कहते हैं। तो ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व खूबी मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत शुक्रिया।